केशव इशिका से मिलने के लिए राजवंश विला आए थे। हालांकि उन्होंने वसुधा से मिलने का बहाना लगाया था, लेकिन अभिमन्यु सब समझ गया था। उन्हें ज्वाइन करते हुए नकुल और प्रशांत भी आ गए थे। वे सब लोग एक साथ वसुधा के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में बिल्कुल शांति थी। अभिमन्यु ने दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही केशव की नज़रें कमरे में घूम गईं, एक तेज निगाह से। वे इशिका को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ वंश और निवेदिता ही थे। केशव थोड़े चौंक गए और गुस्से में पर थोड़े दबे हुए स्वर में बोले, इशिका कहाँ है? उनकी आवाज में बेचैनी साफ छलक रही थी। निवेदिता ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो मिस नायरा ने कहा कि दादी की मेडिसिन का एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, उसकी खास जरूरत थी, इसलिए वो इशिका मैम को लेकर उसे लेने गई हैं। ये सुनकर नकुल ने राहत की एक गहरी सांस ली, क्योंकि इशिका वहां होती तो शायद उसके साथ की गई बदतमीजी केशव के सामने आ जाती। अभिमन्यु ने तिरछा मुस्कुराते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, इट्स सो अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। केशव कितनी मेहनत के साथ वहां आया था, लेकिन इशिका तो वहां थी ही नहीं। केशव ने कुछ पल रुककर आगे पूछा, ओह तो वो मेडिसिन लेने गई हैं, कितनी देर में वापस आएंगी? उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वंश ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे जो मेडिसिन चाहिए वो अलग अलग टाइप की हैं, और उन्हें सब एक ही मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। सबको साफ समझ आ रहा था कि केशव वहां सिर्फ इशिका से मिलने के लिए आए थे। कोई उन्हें गलत न समझे, ये सोचकर उन्होंने वसुधा की तरफ देखा, जो सोई हुई थी। केशव ने वसुधा की तरफ देखकर पूछा, चेहरे से ये अब कुछ बेहतर नजर आ रही है, उम्मीद है जल्द ही ये ठीक हो जाएगी। जी उम्मीद तो यही है, प्रशांत ने जवाब दिया। नकुल ने आगे थोड़ा चापलूस अंदाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया डिनर साथ में करते हैं, मैंने इंतजाम करवा लिया है। उसकी जरूरत नहीं है, अरमान ने बताया कि यहाँ एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है जो काफी अच्छी सर्विस देता है, बस वहीं टेबल बुक करवाई है, केशव ने जवाब दिया। अभिमन्यु से थोड़ा इधर उधर की बातचीत करने के बाद केशव वहां से जा चुके थे। हालांकि उनके चेहरे पर एक मायूसी थी, क्योंकि वे इशिका से नहीं मिल पाए थे। वहीं दूसरी तरफ इशिका इस वक्त उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जहां वो काम करती थी। उसके सामने रेहान स्मिथ था, जो कि दिल्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन था। वो उम्र में लगभग 35 साल से ऊपर का था, जिसके गोल्डन ब्राउन बाल थे। रेहान ने अपने टैबलेट स्क्रीन में कुछ डेटा निकाला और उसे इशिका के सामने करते हुए कहा, इनमें उन सभी लोगों की सारी जानकारी है जिन्हें दवाई की इस वक्त सख्त जरूरत है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकती हैं। इशिका ने उनकी तरफ देखा और कुछ पल रुककर कहा, डीन क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई वंश जिंदल नाम का रिसर्चर है? इशिका कुछ की करके ये जानना चाहती थी कि आखिर वंश को दवाइयां बाहर निकालने की परमिशन किसने दी थी। रेहान ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में कहा, हाँ वो हमारे इंस्टीट्यूट में ही काम करते हैं और फिलहाल के लिए 10 दिन की एनुअल लीव पर गए हुए हैं। क्या कुछ हुआ है? इशिका को परेशान देखकर रेहान ने पूछा। उनके बातों और बर्ताव से इशिका समझ गई थी कि मिस्टर स्मिथ इस बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने सिर हिलाकर कहा, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो इंसान गोवा में आया हुआ है? उसकी बात सुनकर रेहान ने चौंकते हुए पूछा, वो गोवा में है? क्या वो छुट्टी मनाने यहाँ आया है? मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इशिका काफी परेशान लग रही थी। रेहान ने कुछ पल रुककर आगे कहा, इज एनीथिंग सीरियस डॉक्टर अनामिका? उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। इशिका ने सख्ती से कहा, यस डीन, बात यह है कि कोई अचानक से राजवंश फैमिली में आ गया है और दावा कर रहा है कि उसे एक एक्सपेरिमेंटल स्लॉट मिला है। उसकी बात सुनकर रेहान को हैरानी तो हुई, लेकिन साथ ही वो हल्के गुस्से में बोला, ये कैसे मुमकिन है? स्लॉट सभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उसे कैसे ये स्लॉट मिल सकता है? इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रेहान उसके कहने का मतलब समझ रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं समझ गया हूँ डॉक्टर अनामिका, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। डोंट वरी, मैं इस मामले के तह तक पहुंचूंगा। इतना कहकर वो बिना खाना खाए जांच के लिए निकल गया। इशिका वहीं आराम से बैठ गई। इशिका ने डिनर करने के बाद ही वहां से जाने का सोचा। उसकी सीट रेस्टोरेंट के एंट्रेंस के सामने थी, इसलिए उसने खाना खाते हुए बाहर का नजारा देखा। अचानक एक ब्लैक लग्जरी कार एंट्रेंस पर रुकी। उसमें से एक 50 साल के आसपास का आदमी बाहर निकला। उसकी मैच्योरिटी में एक खास अट्रैक्शन था, वो काफी हैंडसम भी था। वो केशव सिंघानिया था। इशिका को वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ी देर तक देखा। केशव जो अभी अभी आए थे ने तुरंत इशिका की नजर पकड़ी और इसकी तरफ देखा। उन्होंने भी इशिका को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वे अचानक अपनी जगह जम गए। कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी माँ को उनके जवान होने पर देखा हो। वो लड़की उनकी मरी हुई माँ से काफी मिलती जुलती थी और वे अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रहे थे। वे इशिका को मायूस होकर देख रहे थे, अनजाने में उनके पास पड़ते हुए। जब इशिका ने देखा कि वो हैंडसम मिडिल एज्ड मैन उनके पास आ रहा था तो वो थोड़ी चौंकी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि और कोई नहीं है, तो क्या ये आदमी से मिलने आ रहा था? जब वो इस बारे में सोच रही थी, उसने देखा कि केशव उनके सामने बैठ गए। इशिका ने पूछा, आपको कुछ चाहिए? केशव ने थोड़ा बेपरवाही से कहा, क्या तुम मुझे घूर नहीं रही थी पहले? इशिका हैरान हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, उसने केवल कुछ पल के लिए ही उसे देखा था। इतने में ही वो अचानक उसके सामने आकर कैसे बैठ सकते हैं? इशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस लगा कि आप बहुत फेमिलियर लगते हैं सर। ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। केशव ने इशिका के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए धीरे से कहा, अजीब इत्तफाक है, तुम भी मुझे जानी पहचानी सी लगती हो। 20 साल से ज्यादा हो गए थे जब उन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। ध्यान से देखने पर इस लड़की का बिहेवियर उनकी माँ जैसा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा लगभग उसकी माँ की तरह लगता था। इस तरह के इत्तफाक अचानक नहीं होते थे। केशव को काफी अजीब लग रहा था कि एक अनजान लड़की की शक्ल उनकी माँ से मिलती है। कुछ पल रुककर उसने हल्का हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हारे डैड का सरनेम क्या है? इशिका हैरान हो गई। उसे ये आदमी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उसे परिचित सा भी महसूस हुआ, जिससे उसका झूठ बोलने का मन नहीं कर रहा था। आदर्श उसका पिता नहीं था, शायद केशव थे या शायद नहीं। मिसेस सिंघानिया ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। राधिका की आंखों में गहरी उदासी थी, इसलिए इशिका ने और ज्यादा पूछताछ नहीं की। कुछ पल सोचने के बाद इशिका ने कहा, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज़ धीमी और उदास थी। केशव चौंकते हुए बोले, तुम्हें कैसे नहीं पता? क्योंकि मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। इशिका ने कंधे उचकाकर कहा, आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, कभी अपने डैड से नहीं मिली? उसे इतना बेपरवाह देखकर केशव ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। पहली बार उसे कोई इस बात के लिए जज नहीं कर रहा था कि वो अपने पिता के बारे में नहीं जानती। इशिका ने भी मुस्कुराकर कहा, सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए मेरी माँ ही काफी है, उनके होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। केशव को भी इशिका में इंटरेस्ट आने लगा था। उन्होंने आगे पूछा, क्या तुम अपनी माँ के बहुत क्लोज हो? हाँ, इशिका ने जवाब में कहा। जब से उसे राधिका को अपनी माँ होने का सच पता चला था, तब से वो अपना दिल खोलकर किसी से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन राधिका बीमार थी और अभिमन्यु दादी के मामले में बिजी था। अभिमन्यु ठीक से इशिका को टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसके दिल में काफी सारी बातें थी। हालांकि केशव इशिका के लिए पूरी तरह अजनबी थे, लेकिन फिर भी उसका दिल किया जैसे वो उन्हें सब कुछ बता दे।
इशिका ने आगे कहा, आप जानते हैं, मेरी मॉम दुनिया की बेस्ट मॉम है। उन्होंने कभी मेरे ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया। अगर मेरे कम मार्क्स भी आते थे तो वो मुझे डांटती नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। मेरी मॉम मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उनसे। आपको पता है, मैंने शादी की तो इस बारे में किसी को नहीं बताया, फिर भी मेरी मॉम ने गुस्सा नहीं किया। सब कहते थे कि वो एक आवारा लड़का है, फिर भी मेरी मॉम उससे मिलना चाहती थी। उन्हें मुझ पर यकीन था कि मैं किसी गलत इंसान से शादी नहीं करूँगी। इशिका बोले जा रही थी और केशव हल्का मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। तब इशिका ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैंने आपको बोर कर दिया। केशव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी माँ सच में ग्रेट हैं, लेकिन मेरी माँ उनसे भी बेहतर थीं। इशिका ने तुरंत ना में सिर हिलाया और हल्का सख्ती से कहा, नहीं हो सकता, इस दुनिया में कोई भी माँ मेरी माँ से बेहतर नहीं है। मैंने कभी अपनी माँ से ज्यादा ओपन माइंडेड माँ नहीं देखी, केशव ने जिद करते हुए कहा। इशिका और केशव के बीच में एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था कि किसकी माँ ज्यादा बेहतर है। इशिका ने आगे कहा, आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तक आपने मेरी माँ को देखा नहीं है। मेरी माँ सिर्फ दयालु नहीं है, वे खूबसूरत भी हैं। केशव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरी माँ और भी खूबसूरत थीं। उन्हें अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत महिला के तौर पर जाना जाता था। इशिका ने मुंह बनाकर कहा, अगर आप मेरी माँ से मिल सको तो आप जान पाओगे, कोई भी मेरी माँ के अट्रैक्शन से बच नहीं सकता। केशव हैरान थे, वे वास्तव में बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो क्यों नहीं, तुम मुझे उन्हें दिखाने ले जा सकती हो? बिल्कुल, अभी चलें। इशिका खड़ी हो गई, मानो वो अभी केशव को राधिका से मिलने के लिए ले जाएगी। उन दोनों की ये नोकझोंक और बहस इतनी क्यूट थी कि आसपास बैठे लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए खाना लेकर आया वेटर भी वहां पर खड़े होकर उनकी बात सुनने लगा। इस वक्त वे दोनों ही किसी छोटे बच्चों की तरह बहस कर रहे थे। इशिका और केशव एक दूसरे को घूरते हुए गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर अचानक दोनों एक साथ हंस पड़े। इशिका ने महसूस किया कि उसका बिहेवियर थोड़ा बचकाना था और बहुत स्टूपिड भी। केशव का आमतौर पर ठंडा चेहरा भी मुस्कुराहट में बदल गया और उन्होंने सोचा कि ये कितना बेवकूफी भरा था कि एक मिडिल एज्ड मैन यहाँ इस यंग गर्ल के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। केशव ने पूछा, क्या तुम्हारे पास आज रात के लिए कोई प्लान है? इशिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरा पति थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। केशव ने कहा, मैंने सुना है कि इस प्राइवेट रेस्टोरेंट में बहुत टेस्टी खाना मिलता है और मैं और ट्राई करना चाहता हूँ। यहाँ कम लोग हैं तो क्या तुम साथ में खाना चाहोगी? इशिका तुरंत बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आप बाहर से आए हो तो डिनर मेरी तरफ से एक ट्रीट समझ लीजिए। नो प्रॉब्लम, केशव ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए कहा। उनकी पर्सनालिटी यशिका को बहुत पसंद आई और वो उन्हें और भी पसंद करने लगी। इसलिए उसने एक वेटर को हाथ से बुलाया और ऑर्डर दिया, एक काम करो, यहाँ जो भी स्पेशल डिशेस बनती हैं वो सभी ले आओ। यशिका वहाँ हेड शेफ के साथ काम कर चुकी थी तो वो जानती थी कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या थी। केशव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था, फिर उसने अचानक कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हें डिनर पर बुलाऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। बिल्कुल, यशिका ने अपना फ़ोन निकाला और उन्होंने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए। केशव ने कहा, मैं आमतौर पर किसी को भी अपने प्राइवेट नंबर नहीं देता हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मुझे ज़्यादा लोगों के टच में रहना पसंद नहीं है, यशिका ने जवाब दिया। एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करने के बाद यशिका ने हल्के मजाकिया तरीके से कहा, अच्छा अंकल, अब से हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं तो आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। केशव ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे एक प्रॉब्लम तो है, एक्चुअली मैंने एक लड़की को नाराज़ कर दिया है जो लगभग तुम्हारे उम्र की है, वो मेरी बेटी की तरह है, क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं उसे कैसे मनाऊँ? आपको उसे फ्लावर्स देने चाहिए, यशिका ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, पिंक फ्लावर्स सबसे अच्छे होते हैं, गर्ल्स पिंक कलर को पसंद करती हैं। केशव ने सिर हिलाया, मैं इसे ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं मानेगी तो मैं आपके लिए और भी आइडिया दूंगी, बस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना, यशिका ने जवाब दिया। यशिका केशव के साथ बात ही कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजी, अभिमन्यु का मैसेज था। उसने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए रेस्टोरेंट में आया हूँ, अच्छा मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं एंट्रेंस में ही हूँ, तुम अंदर आओगे तो मैं दिख जाऊंगी, यशिका ने जवाब दिया और फिर अपना मोबाइल नीचे रखकर सामने की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु गाड़ी से उतरकर अंदर दरवाजे पर पहुंचा, यशिका ने उसे देखकर ऊपर हवा में हाथ हिलाया और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया।